नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित। आज पटना, औरंगाबाद, नालंदा, रोहतास और बेगूसराय समेत 14 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से रोजगार की गारंटी के साथ साथ गांव के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। राज्य सरकार ने कहा, मखाना क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता के दायरे में लाने के लिए उनका लेबर कार्ड बनवाया जाएगा। और आर्थिक अपराध इकाई ने 19 बालू और जमीन माफिया की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। अब समाचार विस्तार से। पूरा प्रदेश घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से ठंड और कनकनी का एहसास बढ़ गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजगीर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सुबह पटना, कैमूर, रोहतास, अरवल, बक्सर, भोजपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया समेत 31 जिलों में अत्यंत घना कोहरा छाया रहा। इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पटना, अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा जिले में शीत दिवस की संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी।
23 दिसंबर 2025 राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों में घना कोहरा एवं शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
इधर घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि इस योजना से गांव के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
इसमें खासियत यह है कि पहले 100 दिन साल में काम देने की बात कही गई थी मनरेगा में, इसमें 125 दिन काम मजदूरों को मिले। सिंचाई की सुविधा पर ज्यादा तवज्जो दी गई है, गांव के विकास पर ज्यादा तवज्जो दी गई है और एक जो कार्य योजना बनेगी वो ग्राम पंचायत के लेवल पर बनेगी और क्या क्या आवश्यकता है, आवश्यकता को ध्यान में रख के ये योजना बनाई जाएगी और रोजगार का भी सृजन कैसे हो सकता है बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत में, इसका विशेष ध्यान इसमें रखा गया।
राज्य सरकार ने कहा है कि मखाना क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता के दायरे में लाने के लिए उनका लेबर कार्ड बनवाया जाएगा। पटना में राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन में इस आशय का फैसला किया गया। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि बैठक में मखाना की समग्र अर्थव्यवस्था, उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात को लेकर 5 वर्ष के लिए रोडमैप तैयार करने पर भी सहमति बनी। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने 19 बालू और जमीन माफिया की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को भेजा है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि चिन्हित माफिया की लगभग 55 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने बताया कि चिन्हित बालू माफिया में 6 बांका के, 3 भोजपुर के और 1-1 पटना और औरंगाबाद जिले के हैं। वहीं भूमि माफिया में 5 पटना के जबकि 1-1 दरभंगा, कैमूर और भोजपुर जिले के हैं।
हम लोगों ने 8 वो माफिया को चिन्हित किया है और 8 लोगों के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए अपराधजनित संपत्ति का संधारण करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। 39.7 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रस्ताव भेजा गया है और इसके ऊपर ईडी आगे अपनी जांच करके कार्रवाई करे। 11 प्रमुख जो बालू माफिया है उनको गिरफ्तार करके उनके द्वारा अर्जित की गई लगभग 15.09 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है इसको चिन्हित किया गया है, जिसके संधारण का प्रस्ताव ईडी को स्थापित किया गया है। ईडी अपना जांच करेगी और जो भी समय कार्रवाई होगी उनकी जांच करके द्वारा की जाएगी।
इधर बिहार पुलिस 289 शराब माफिया की संपत्ति जब्त करेगी। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से 132 के खिलाफ प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रदेश में गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि हत्या, डकैती और दंगे के मामलों में काफी कमी आई है।
सभी मायने में आंकड़ों के हिसाब से विगत वर्षों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है और अपराध में कमी आई है, जैसे हत्या, दंगा, लूट, फिरौती हेतु अपहरण पिछले वर्ष की अपेक्षा हर तीर्थ में कमी आई है, किसी में 8%, किसी में 20%, 25%, तो अपराध के दृष्टिकोण से भी कमी आई है।
उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता दाखिल, खारिज, परिमार्जन और मापी के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना है। मुजफ्फरपुर में आयोजित जन कल्याण संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए दिसंबर महीने में सभी अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है।
हमने 3 समस्याओं को वरीयता दी है, अभी दाखिल, खारिज, परिमार्जन, माफी और उसके बाद अधिकर्मण और जालसाजी, तो ये हमारे नजर में है। हमने सभी अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को दिसंबर महीने की छुट्टी रद्द कर दी है, इसको प्राथमिकता में करने के लिए। हमारे कर्मचारी अब अपने पंचायत भवन में बैठेंगे और वहाँ पर दिन भर रहेंगे, उनका मॉनिटरिंग मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुबह, दोपहर, शाम होगा कि पंचायत भवन में वो है या नहीं है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों के तत्काल और पारदर्शी समाधान के लिए राजस्व कर्मचारियों को जीपीएस लगी मोटरसाइकिल दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि मिलर हाईस्कूल मैदान में श्री नवीन का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्री नवीन पटना हवाई अड्डे से वीरचंद पटेल पथ तक रोड शो भी करेंगे। कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद और विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
सभी कार्यकर्ता पल के बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं और बिहार के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली बात नहीं हो सकता है कि इस बिहार के धरती के लाल, बिहार के धरती का बेटा जो है, इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। हम सभी उनका जश्न के माहौल में इंतजार कर रहे हैं।
इधर पटना जिला प्रशासन ने रोड शो को देखते हुए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक प्राध्यापक के नाम का उल्लेख करते हुए वेबसाइट पर बताएं कि संबंधित प्राध्यापक ने प्रतिदिन किन किन विषयों में कितने वर्ग में पढ़ाई करवाई। इस संबंध में सभी कुलपतियों को आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के शिक्षण और परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड करें, साथ ही दैनिक हो रहे कक्षा का ब्यौरा और वार्षिक परीक्षा का प्रतिदिन अपडेट भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में कल अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने बताया कि इस महीने की संगोष्ठी हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा की थीम पर आधारित है। उन्होंने अभिभावकों से संगोष्ठी में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे संवाद से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। डाक विभाग ने छात्रों के हित में स्टूडेंट पार्सल डिस्काउंट स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छात्रों को पार्सल बुकिंग पर डाक शुल्क में 10% की छूट दी जाएगी। बुकिंग के समय छात्रों को संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाना होगा। यह योजना 1 जनवरी से लागू होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा के 1799 पदों पर बहाली के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 18 और 21 जनवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 30 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। किसान दिवस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में आज से 2 दिवसीय किसान मेला सह राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मेले की थीम है अनुसंधान से आत्मनिर्भरता की उड़ान, समृद्ध कृषि, सशक्त किसान। कार्यक्रम का कृषि मंत्री रामकृपाल यादव उद्घाटन करेंगे। इस मेले में 1000 से अधिक किसानों के शामिल होने की संभावना है। प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श गौशाला की स्थापना होगी। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग की सचिव एन विजयलक्ष्मी ने बताया कि विभाग की हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि इन गौशालाओं को ग्रामीण विकास, पशुधन संवर्धन के साथ साथ इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि पटना स्थित उद्यमिता विकास संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि संस्थान में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने के आरोप में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने दरभंगा के कार्यपालक अभियंता और 4 सहायक अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। ओडिशा में दारोगा प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को सीबीआई की टीम ने खुसरूपुर से गिरफ्तार कर लिया है। छपरा व्यवहार न्यायालय ने भूमि विवाद में हुई हत्या के एक मामले में 2 सगे भाइयों सुनील राय और सुमन राय तथा एक अन्य दोषी भूषण राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मधुबनी जिले के लहरियागंज मुसहरी टोला में देर रात 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। बेतिया जीएमसीएच में जूनियर चिकित्सकों और जीविका दीदियों के बीच हाथापाई की घटना में 10 जीविका दीदी घायल हो गयी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है 7 निश्चय 3 पूरा करने में नीतीश ने मदद मांगी, मोदी बोले हम साथ हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है 19 बालू और जमीन माफिया की संपत्ति जब्त होगी। प्रभात खबर की सुर्खी है राज्य में 400% तक बढ़ेगा सर्किल रेट। दैनिक जागरण ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के हवाले से लिखा है राजस्व दस्तावेज में लिखा जाएगा अब भूमिहार ब्राह्मण। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं संसदीय समिति VPG रामजी एक्ट और मनरेगा की करेगी समीक्षा। आज अखबार की सुर्खी है 4,932 नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्य कर्मी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित। आज पटना, औरंगाबाद, नालंदा, रोहतास और बेगूसराय समेत 14 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा विकसित भारत जी रामजी अधिनियम से रोजगार की गारंटी के साथ साथ गांव के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। राज्य सरकार ने कहा मखाना क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता के दायरे में लाने के लिए उनका लेबर कार्ड बनवाया जाएगा। और आर्थिक अपराध इकाई ने 19 बालू और जमीन माफिया की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।